लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, हम वर्ष 2020 में घातक विश्व महामारी कोरोना के बेहद खतरनाक काल से गुजरे हैं। कोरोना ने दंगा फसाद, धार्मिक उन्माद, लॉकडाउन के दौरान दर दर भटकते भूखे प्यासे मजबूर लोगों के दुख दर्द व बेहद गहरे जख्म दिए हैं। अर्थव्यवस्था में गिरावट के मामले में साल 2020 अभूतपूर्व रहा। काम धंधे, बेरोजगारी, बेहाल आर्थिक स्थिति व डर के चलते लोग बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं। हालात यह हो गई है कि कोरोना के भय व बचाव के मारे लोग दिल खोलकर खुशियां तक मनाने के लिए तरस गए हैं। इन्हीं मुसीबतों के बीच 2021 की शुरुआत हुई है। वैसे भी अधिकतर लोग चाहते हैं कि नूतन वर्ष का यह प्रथम दिन उज्जवल भविष्य की आशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू हो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने नव वर्ष के लिए उम्मीदों से भरा संदेश जारी किया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि नया वर्ष पिछले साल द्वारा दिए गए जख्मों को भरने का मौका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरने वाला वर्ष एक ऐसा दौर रहा है जब कोविड-19 महामारी ने हर एक इंसान के जीवन को प्रभावित किया है।
So many loved ones have been lost, and the pandemic rages on, creating new waves of sickness and death. Poverty, inequality, and hunger are rising. Jobs are disappearing, and debts are mounting.
महासचिव कह रहे थे कि बहुत सारे प्रियजनों के जीवन समाप्त हो गए हैं और महामारी का विनाश अब भी जारी है, जिसने बीमारी और मृत्यु की नई लहरें उत्पन्न कर दी हैं। निर्धनता, असमानता और भुखमरी बढ़ रही हैं, रोजगार व कामकाज गायब हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है और बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है, घरों में हिंसा व असुरक्षा बढ़ रही है। इन सबके बावजूद एक नव वर्ष हमारे सामने है और अगर हम सभी एकता व एकजुटता के साथ मिलकर काम करें तो आशा की किरणें दुनिया भर में पहुंच सकती हैं। महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के शब्द। उन्होंने कहा कि लगातार महसूस की जाने वाली तकलीफ और दुख की इस पृष्ठभूमि में भी लोग अपने पड़ोसियों और अजनबियों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। अग्रिम मोर्चों पर काम करने वाले कर्मी अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। वैज्ञानिक गण रिकॉर्ड कम समय में वैक्सीन विकसित कर रहे हैं और बहुत से देश जलवायु आपदा को रोकने के लिए नई प्रतिबद्धताएं व्यक्त कर रहे हैं। महासचिव ने कहा कि एक बेहद कठिन वर्ष का यही पैगाम और सबक है। उधर यूएन महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजक्रिन ने भी अपने नव वर्ष संदेश में दुनिया भर के हर एक इंसान से कोरोना वायरस महामारी का खात्मा करने और एक समावेशी व टिकाऊ भविष्य बनाने की खातिर एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है।
संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकासशील दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता में तेजी लाने के उद्देश्य से 31 दिसंबर को फाइजर कंपनी की वैक्सीन बायोएनटेक को आपात स्थिति में प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी है। संगठन ने दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों को इकट्ठा कर उन्होंने यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की टीम के साथ मिलकर फाइजर की वैक्सीन के विवरण और बारीकियों की जांच पड़ताल व समीक्षा की। इन तमाम विशेषज्ञों और यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की टीम ने पाया कि ये वैक्सीन सुरक्षा और फायदे के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों और कसौटी पर खरी उतरती है। इस वैक्सीन के संभावित जोखिमों की तुलना में इसके लाभ कहीं ज्यादा हैं। दवाओं व स्वास्थ्य उत्पादों की उपलब्धता संबंधी मामलों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायक महानिदेशक ने कहा, कोविड 19 महामारी की वैक्सीन दुनिया भर में उपलब्ध कराने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये मंजूरी दिए जाने के बाद अब देशों के लिए अपने यहाँ नियामक मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के दरवाजे खुल जाएंगे और वैक्सीन आयात करने व जरूरतमंदों को दिए जाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा सकेगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
कोविड 19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी प्रमुख डॉ मारिया वैन कारखोव ने ध्यान दिलाया कि जिन देशों ने महामारी का मुकाबला प्रभावशाली और सफलतापूर्वक किया है, जरूरी नहीं कि वो उच्च आय वाले देश थे, बल्कि उनमें ऐसे देश ज्यादा थे जिन्होंने अन्य संक्रामक बीमारियों का भी असरदार तरीके से सामना किया है। उन्होंने कहा कि इन देशों ने दुखद घटनाओं की गहरी स्मृतियों का सहारा लेकर अपनी व्यवस्थाओं को त्वरित गति से काम करने और वायरस का मुकाबला व्यापक और एकजुट रूप में करने के लिए कदम उठाए। डॉ वैन कारखोव और डॉ माइक रायन ने संयुक्त रूप से विश्व का आह्वान किया है कि अगले किसी स्वास्थ्य संकट का सामना करने के लिए बेहतर तैयारी मौजूद रहे, जिसमें व्यापक रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते हुए अपना काम कर सकें और नागरिक व्यापक रूप से जानकारी रखते हुए खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हो सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसस ने पत्रकारों को बताया कि यूएन स्वास्थ्य एजेंसी वायरस के बारे में हर दिन नई बातें सीख रही है, जिनमें इस वायरस के नए रूपों के फैलाव, लोगों को बीमार बनाने या मौजूदा परीक्षण, इलाज सुविधाओं और वैक्सीनों पर संभावित असर छोड़ने की क्षमता के बारे में जानकारी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने हालांकि ये भी आगाह किया कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जल्दबाजी हो सकती है जिसमें कोविड 19 को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। इस प्रेस वार्ता में अतिथि वक्ता प्रोफेसर डेविड हेमेन ने कहा कि अब हमारे पास ऐसे हुनर और उपकरण हैं जिनके माध्यम से जीवन बचाए जा सकते हैं और हम कोविड 19 के रहते भी जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर माइक रायन ने सहमति व्यक्त करने के अंदाज में कहा कि कोविड 19 के वैश्विक आबादी में एक महामारी बनकर रह जाने की संभावना है। वैक्सीनों और टीकाकरण के सहारे ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि संक्रामक बीमारियों का बिल्कुल उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज इस महामारी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य का पीछा करने के बजाय पूरी ताकत व क्षमता के साथ जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करके हालात बेहतर बना सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। उसके निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। हर साल इन 10 में से 5 चुने जाते हैं। भारत के लिए नया वर्ष वैश्विक लिहाज से एक नया साल खास मायने रखता है। 1 जनवरी से भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 2021 और 2022 के लिए सुरक्षा परिषद में नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्यों का ध्वज स्थापना समारोह 4 जनवरी को संपन्न हुआ। नए सदस्यों में मेक्सिको, भारत, आयरलैंड, केन्या और नॉर्वे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते हम आतंकवाद जैसे मानवता के साझा दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचकेंगे। सुरक्षा परिषद में अपने कार्यकाल के दौरान भारत का खास ध्यान शांति रक्षा, शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं, युवाओं, संघर्ष की स्थितियों और मानव केंद्रित प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर रहेगा। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 8 जनवरी को एक ट्वीट संदेश प्रकाशित कर समाज के कमजोर वर्ग के प्रति उदारता और समर्थन का आग्रह किया है। शुक्रवार 8 जनवरी को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, मेरी मंगल प्रार्थना है कि बेतलहम का नन्ना बालक विशेष रूप से समाज के दुर्बल, रोगग्रस्त, बेरोजगार और कठिनाइयों से गुजर रहे लोगों के प्रति उदारता और समर्थन प्रदर्शित करने में हमारी मदद करे। वैटिकन और कलीसिया के परमाध्यक्ष की सुरक्षा के लिए तैनात विश्व की सबसे छोटी सेना में भर्ती होने के लिए 15 नए स्विस गार्ड्स स्विट्जरलैंड में अपनी सैन्य ट्रेनिंग पूरी करने के बाद द्विमासिक बुनियादी प्रशिक्षण के लिए रोम पहुंच चुके हैं। वैटिकन में स्विस गार्ड सैनिकों के कप्तान सर्जेंट ऊर्स ब्राइटन मोजर ने 6 जनवरी को प्रकाशित एक वक्तव्य में कहा, स्विट्जरलैंड से 15 नए सैनिकों का स्वागत करना हमारे लिए खुशी का मौका है। उन्होंने बताया कि वैटिकन और संत पापा की सुरक्षा के लिए तैनात स्विस गार्ड सेना में 15 नए सैनिकों की भर्ती से अब सेना की कुल संख्या 134 सैनिकों की हो गई है। 3 वर्षों पूर्व वैटिकन ने सेना में 110 के बजाय 135 सैनिकों की भर्ती को मंजूरी दे दी थी। परम धर्म पीठे स्विस गार्ड्स सेना में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जिसमें कद की लंबाई से लेकर अन्य आवश्यकताएं जैसे कैथलिक होना और अविवाहित होना भी शामिल है। इसके अलावा उम्मीदवारों का स्विट्जरलैंड के नागरिक होना भी जरूरी है। परम धर्म पीठीय स्विस गार्ड सेना की स्थापना 1506 ईस्वी में संत पापा जूलियस द्वितीय द्वारा वैटिकन और कलीसिया के परमाध्यक्ष की सुरक्षा हेतु की गई थी। वॉशिंगटन के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल विल्टन ग्रेगरी ने अमरीकी कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा मचाए गए फसाद की निंदा करते हुए प्रार्थना और शांति की अपील की है। कार्डिनल विल्टन ने बुधवार संध्या एक वक्तव्य जारी कर कहा, हमारा संयुक्त राज्य कैपिटल एक पवित्र भूमि और एक ऐसी जगह है जहां शताब्दियों के अंतराल में लोगों ने अपने विभिन्न मत प्रकट किए हैं तथा विविध विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए सही प्रदर्शन किया है। उस इमारत में स्वतंत्रता की विरासत का अनादर और अपमानित किए जाने से हम सबको अपने अधिकारों के उल्लंघन का एहसास होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका के लिए इस संवेदनशील क्षण में कार्डिनल ग्रेगरी ने विभाजनकारी और भड़काऊ बयानबाजी के अंत के लिए प्रार्थना का आग्रह किया तथा कहा कि जो लोग भड़काऊ और उत्तेजक भाषा का उपयोग करते हैं उन्हें हमारे देश में बढ़ती हिंसा को भड़काने की जिम्मेदारी लेनी होगी। चुनाव परिणामों के प्रमाणन के विरोध में बुधवार दोपहर को ट्रंप के अराजक समर्थकों ने अमरीकी कैपिटल इमारत में घुसकर हिंसा और तोड़फोड़ मचाई थी, जिसमें कम से कम चार व्यक्तियों के प्राण चले गए हैं। नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत के सर्टिफिकेशन समारोह को रोकने के लिए ट्रंप के भड़काऊ भाषण सुनने के बाद उनके समर्थकों ने फसाद मचाया था, जिसकी सर्वत्र निंदा की जा रही है। मानव जीवन की रक्षा करना तथा संविधान का सम्मान करना, ये हैं इथियोपिया में आदिस अबेबा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल बरहानीसुस सोराफियल के क्रिसमस संदेश के प्रमुख बिंदु। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक पूर्वी रीति की कलीसियाएं 7 जनवरी को ख्रीस्त जयंती यानी कि क्रिसमस महापर्व मनाती हैं। अपने संदेश में कार्डिनल सोराफियल ने लिखा, ईश प्रतिरूप में सृजित मनुष्य की छवि को विकृत करना बंद किया जाए। इतने अधिक लोगों का विस्थापन, मृत्यु और विलाप तथा दुख दर्द को दूर किया जाए। कार्डिनल महोदय का संदेश तिगरी क्षेत्र में जारी हिंसा के संदर्भ में था, जहां विगत 2 माहों से विपक्षी नेताओं और सत्तारूढ़ सरकारी गुटों के बीच संघर्ष चल रहा है। सभी गुटों और दलों का कार्डिनल सोराफियल ने आह्वान किया कि वे इथियोपिया में पुनः शांति की स्थापना हेतु सभी मतभेदों को दूर रखें, संवाद द्वारा विभाजनों को पाटने का प्रयास करें तथा किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन न होने दें। कार्डिनल सोराफियल ने लिखा, अपनी जाति, जनजाति, रंग, लिंग और उम्र से परे हम भाइयों और बहनों की तरह एक परिवार बने जो एक दूसरे का समर्थन करने को तत्पर रहता तथा सदैव शांति के निर्माता बनने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा, प्रभु येसु ख्रीस्त का आदर्श ग्रहण कर हम परस्पर एक दूसरे से और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करें। एशियाई कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने 6 जनवरी 2021 को फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित सामाजिक संप्रेषण माध्यम संस्थान वेरिटास एशिया से व्यास कॉम नामक सामाजिक संप्रेषण संबंधी 3 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उद्घाटन किया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम पहल की प्रस्तुति जूम मंच पर आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से हुई, जिसमें एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के सामाजिक संप्रेषण कार्यालय के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रोबेर्टो मल्लारी ने भाग लिया। इस अवसर पर महाधर्माध्यक्ष मल्लारी ने कहा, संचार और संप्रेषण कलीसिया के मिशन के लिए केंद्रीय हैं, इसलिए कि प्रभु ईश्वर खुद मानव के साथ संचार करते हैं। उन्होंने कहा, पाठ्यक्रमों का उद्देश्य एशियाई प्रेरित कार्यकर्ताओं के बीच गतिशीलता को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें प्रभावी मिशन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। उक्त कार्यालय के उपाध्यक्ष फादर जॉर्ज प्लाथोटम ने स्पष्ट किया कि उक्त पाठ्यक्रम ऑनलाइन और साथ ही उपस्थिति में भी संभव होंगे ताकि कोविड विरोधी नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सूचना प्रसारण को समयबद्धता सहित सुविधाजनक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को आरंभ पाठ्यक्रम एशियाई संदर्भ में प्रेरित कार्यकर्ताओं को नवीन तकनीकी और नवीन मीडिया द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने हेतु उपयुक्त अस्त्र प्रदान कर सकेगा। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।